ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ 2025 एकता और समानता का एक ऐसा महायज्ञ होगा जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। श्री मोदी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन्हें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए गंगा नदी में जाने वाले नालों के पानी को रोकने और पानी का उपचार करने की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया, जिसमें महाकुंभ की गतिविधियों के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कुंभ को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संगम के लिए याद किया जाएगा। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को रेखांकित करते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री सिंह ने कहा कि विपक्ष द्वारा हमेशा से ही संविधान की मूल भावना को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान नागरिकों को सुरक्षित रखने का सुरक्षा कवच है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना खतरे में है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल से मध्य प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ग्वालियर में जिवाजी विश्वविद्यालय में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन और श्रीमंत जिवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के शीतकालीन सत्र में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया तो उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी रोकना चाहिए। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने बाढ़ गंगा में रामकुंड टैंक के पास एक दीवार गोबियनवाल बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य समुद्री जल और मलबे के प्रवेश को रोकना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल के साथ चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, विरासत और समुद्री क्षेत्रों में नए अवसरों की पहचान की विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर चल रहे 22वें दिव्य कला मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विशेष आयोजन देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके कल से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्री दिसानायके की ये पहली भारत यात्रा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का 3रा मैच आज से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच सुबह 5:50 पर शुरू होगा। 5 मैचों की ये श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।